ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೀ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕೀ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ್ ಮಹಾಪುರಾಣ ಪಾಠ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂದ ವಿಂಶ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಯಂ ಸಂತಮಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಸ್ಥಂ ವೇದ ಪುರುಷಃ ನಾಜ್ಯತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥೋಪಿ ತದ್ಗುಣೇ ಸಮಯಿ ಸ್ಥಿತಃ. ಯಂ ಸಂತಮಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಸ್ಥಂ ವೇದ ಪುರುಷಃ ನಾಜ್ಯತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥೋಪಿ ತದ್ಗುಣೈ ಸ ಮಯಿ ಸ್ಥಿತಃ. ಯಂ ಸಂತಮಾತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಸ್ಥಂ ವೇದ ಪುರುಷಃ ನಾಜ್ಯತೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥೋಪಿ ತದ್ಗುಣೈ ಸ ಮಯಿ ಸ್ಥಿತಃ.
शब्दार्थ जो जा जो कोई एवं इस प्रकार संतम विद्यमान आत्मानम आत्मा तथा परमात्मा आत्मस्थम अपने शरीर के भीतर वेद जानता है पुरुष व्यक्ति न कभी नहीं अज्यते प्रभावित होता है प्रकृति जड़ प्रकृति में। स्थ स्थित, अपि भी तद्गुणे प्रकृति के गुणों से। स ऐसा व्यक्ति, मई मुझ में, स्थितः स्थित है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है, भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है। तात्पर्य, जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं रहते हैं। इसी प्रकार जो श्री भगवान से संबंध है, ये भौतिक देह या भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। इसका वर्णन भगवद गीता में भी बड़ी सुंदर ढंग से प्राप्त हो रहा है। मांग च यो यव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग में संलग्न है, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके मुक्त हो जाते हैं। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी का कथन है कि यदि कोई मन वचन तथा कर्म से भगवान की सेवा में तत्पर रहता है तो उसे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त मानना चाहिए। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब कुछ दिनों से ये भागवत के चतुर्थ स्कंद में ये जो प्रसंग सुन रहे हैं, जहाँ पर पृथु महाराज के यज्ञ स्थल पर यज्ञ बंद हो जाने के बाद भी यज्ञ स्थल पर यज्ञ ईश्वर भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के इंद्र को साथ में लिए हुए पृथु महाराज के सामने ये वचन कह रहे हैं कि भगवान पृथु महाराज को ये प्रेरणा दे रहे हैं, उनको अनुरोध कर रहे हैं कि इंद्र को माफ कर दो। और माफ करने के लिए कुछ तत्व उपदेश करते हैं क्यों क्षमा कर देना चाहिए। सभी यज्ञस्थल में भरी सभा में भगवान श्री हरि इंद्र को जो अपराधी था उनको साथ में लिए हुए पृथ्वी महाराज के सामने तत्व उपदेश कर रहे हैं। भगवान जैसे अर्जुन को कभी कभी समय पड़ता है, भगवान ऐसे उपदेश करते हैं। भगवान की व्यवहार बड़े विलक्षण है। यहां पे यज्ञ स्थल पर पृथ्वी महाराज यज्ञ कर रहे थे, उनके यज्ञ में बुरी तरह से हाथ धोकर के पीछे पड़ गया इंद्र, देवराज होकर भी कई प्रकार पकड़ा भी गया, दोषी ठहर गया, लेकिन फिर निर्लज्ज छोड़ा नहीं, बार बार उनको बाधित किया। तो जब पृथ्वी महाराज और उनके पार्टी लोग इंद्र को पकड़े दंड देने के लिए, तो ब्रह्मा जी आके समझाए, तो पृथ्वी महाराज मान के बोले छोड़ दो। तो भगवान भी यज्ञ अपूर्ण रहा, फिर भी भगवान प्रकट होकर के इंद्र को साथ में लेकर आए, विश्व व्यवस्था को ठीक रखना है, बोले देवराज इंद्र है, वो अपना पोस्ट में जाना है, उसको माफ कर दो जाए। तो एक आपने स्वार्थ के कारण भक्त के अपराध किया, यज्ञ को अवरोध किया, ठीक काम नहीं किया, इसके कारण सभी जानते हैं गलती किया, और इस गलती को उन्होंने महसूस करके वो माफी मांगने के लिए भी शर्मिंदा हो रहा है, फिर भी भगवान उसको साथ में लेकर के आकर के भरी सभा में बोलते हैं उसको माफ कर दो, भले वो शर्म के मारे इस क्षमा नहीं मांग रहा है, आप कर दो। और क्यों क्षमा कर दो? क्योंकि यही जीवात्मा का असली धर्म है, इसी से मैं प्रसन्न होता हूं, तत्त्वतः यही ज्ञान है, इसलिए तत्व ज्ञान बताए भगवान ने। ठीक इसी प्रकार और एक केस हुआ था, दोनों परिवार में लड़ाई झगड़ा हो गया, कुरु और पांडव में, और कुरुओं में जो दुर्योधन आनंद कंपनी थे, वो आप जानते हैं हर प्रकार के अधर्म काम किए, आतताई के जो षट कर्म होता है वो छह कुछ पूरा कोर्स किए थे कंप्लीट। तो जो भी हो, महाराज युधिष्ठिर साक्षात धर्ममूर्ति है और उनके समस्त छोटे भाई उनके अनुगत थे, सब कुछ सहन कर लिए। सहन करने के बावजूद बोले हमको एक छोटा मोटा गांव दे दो, हम अपना रहे, आप अपना रहो, राज ले लो, सब कुछ ले लो, वो भी हुआ, इतने भी सहन नहीं हुआ। उनके भवन को देखो, वो अपने बलबूते पर अपने भवन निर्माण किए, यज्ञ किए, दुर्योधन को सहन नहीं हुआ, कपट पसा खेल करके उनको पराजय करके नाना प्राप्त, जानते हैं क्या क्या महाभारत बड़ा वर्णन है, फिर भी लड़ाई करने के लिए बहुत पीछे हटते थे युधिष्ठिर एंड कंपनी। बोले कि किसी प्रकार संधि समझौता कर दो, लेकिन दुर्योधन तो इतने बदमाश था, वो तो सपथी कसम खाया कि लड़ाई के बिना मैं सुई के नोक पर जमीन नहीं दूंगा। लो भगवान भी आए संधि करने के लिए, दूत बन करके, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, भगवान को अरेस्ट करना चाहो। तो वहां भी कुरुक्षेत्र जैसे धर्मस्थल पर दोनों पक्ष के योद्धा इकट्ठा हो चुके थे, उन भरी सभा में युद्ध की सायरन बज चुकने के बाद रथी अर्जुन को गाड़ी को भगवान ड्राइवर के रूप में ले जा करके बिल्कुल बीचों बीच पार्किंग करके अपने सामने भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म और द्रोणों का बिल्कुल सामने गाड़ी पार्किंग किए और उनको दिखाकर बोले उनके साथ लड़ना है। अर्जुन को साधारण व्यक्तित्व तो थे नहीं, बहुत बड़े साधु महात्मा थे, उनके अंदर साधु योग्य सारे सदगुण था, तो उन्होंने तुरंत लड़ाई करने के लिए मना की, बोले ना मैं नहीं लड़ सकता हूं, ये मेरे पूज्य लोग हैं, मेरे ताऊ चाचा गुरु हैं, मेरे परिवार के हैं, उनके सामने मैं अभी तक उच्चा करके बात नहीं किया, उनके सामने उठकर देखा भी नहीं, उनको बाण कैसे चलाऊं, ये मेरे से नहीं हो सकता, भले मुझे मार दे सब कुछ लूट ले मैं नहीं करूंगा। कितनी अच्छी बात है अर्जुन का, कितनी दया है उनके अंदर, कितने सुंदर विचार है। लेकिन भगवान ने उन्हीं दोनों सन्ये को बीचों बीच भरी स्थल में वहां पर भगवान ने कुछ तत्व उपदेश दिए जिसको हम भगवत गीता गीतोपनिषद रूप में जानते हैं। और ये तत्व उपदेश किस लिए दिए, क्षमा करने के लिए। यहां तत्व उपदेश क्षमा कर दो, क्षमा करना ही काम है। यहां किस लिए तत्व उपदेश दिए, उनको मारो गला काटो सालों को, क्षमा को कभी नहीं करना। अर्जुन जबकि क्षमा गुणी से गुणी होकर के लड़ाई ना करूं, बोले ना मैंने कभी नहीं करूंगा, भले जो भी हो जाए। भगवान ने तब कुछ उपदेश दिए, इस उपदेश से अर्जुन तुरंत खड़े हो गए। आधे घंटे के अंदर कोई मेडिसिन काम नहीं करेगा, इतने सुपर मेडिसिन भगवान ने चलाया बातों बातों में। अर्जुन को हाई टेम्परेचर हो चुका था, कुछ ऐसी बातें किए, तत्व ज्ञान दिए। अर्जुन ने खड़े होकर बोला हाँ मारूंगा, करिष्ये वचनं तव, और लड़ाई किया। यहां तो भगवान ने क्षमा करने के लिए नहीं बोले, इतना भारी उपदेश यहां दे रहे हैं कि क्षमा कर देना चाहिए। बोले वो भले वो न मांगे क्षमा, फिर भी आप कर दो अपने ओर से। ये भगवान की क्यों कब कैसे क्या कर रहे हैं ये समझा नहीं जा सकता। स्थान काल परिस्थिति में भगवान अपनी तत्व को प्रकट करते हैं। तो यहां केवल पृथ्वी महाराज के अंदर क्षमा गुण को यद्यपि क्षमा कर दिए थे, लेकिन फिर भी इसी को दिखाने के लिए भगवान ने पूरे तत्व ज्ञान दे रहे हैं और बोल रहे हैं। देखो पिछले श्लोक में, इस श्लोक में जो शब्द आया य एवं, ये जो एव शब्द है मतलब इस प्रकार, जो य मतलब जो, एवं संत इस प्रकार स्थित हो जाए। इस प्रकार किस प्रकार, जो मैं अभी वर्णन किया पिछले श्लोक में, क्या वर्णन किया, ना जीवात्मा परमात्मा और इस देह, देह मतलब देह और देही, जीवात्मा देही है, इस देह में बंधन में पड़ा हुआ है, तो ये दोनों एक है, गाड़ी एंड ड्राइवर, विथ ड्राइवर विथ कार और वहां डायरेक्टर, ये तीनों को जो ठीक से समझ ले क्या विलक्षणता है, क्या अंतर है। परमात्मा और जीवात्मा और देह के साथ क्या अंतर है, पिछले श्लोक में गिन गिन करके नौ प्रकार के भिन्नता बताए, नौ गुण बताए जिसमें परमात्मा जीवात्मा और देह से भिन्न है, अलग है, एक एक करके बता दिया। अब इस श्लोक में कहते हैं कि इस प्रकार जो स्थित है, जो जान चुका है ठीक से कि किस प्रकार श्री परमात्मा इस देही और देह से भिन्न है, इस प्रकार देही भी देह से भिन्न है, इस तीन तत्व को इस प्रकार जो जान ले क्या किसी का पोजीशन है, गाड़ी क्या है, गाड़ी के अंदर गाड़ी चलाने वाला जो बैठा है वो रथी क्या है, और जो उसको संचालन कर रहा है वो क्या है, इन तीनों की स्थिति को जो जान करके समझ करके उसके अनुसार कर्म करे वो, जो इस प्रकार कर ज एवं संतम, जो इसी प्रकार स्थित होकर कर्म करे स वो प्रकृति में रहते हुए गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी चलाते हुए काम करते हुए भी अपि इस भौतिक प्रकृति जड़ प्रकृति के गुण से प्रभावित नहीं हो सकता, न अज्यते इसमें लिप्त नहीं हो सकता, उसको प्रकृति गुण फंसा नहीं सकता, नहीं फंसा सकता। यद्यपि उसी में जब तक हम शरीर में रहते हैं तो शरीरस्थ होने के नाते, शरीरी होने के नाते शरीर के धर्म हमारे ऊपर लागू होगा ही, लेकिन शरीर के अंदर रहते हुए भी अगर कोई इस प्रकार ज्ञान में स्थित हो जाए तो फिर शरीरस्थ नहीं रहता, शरीरी नहीं होता वो। भगवान अंतिम श्लोक के अंतिम स्थित मई स्थित, वो मुझ में हो जाता है, फिर शरीर में नहीं रहता। अपना शरीर तो मेरे में रहता तो मेरे धर्म लागू होगा, शरीर का धर्म लागू होगा नहीं उसमें, साफ साफ बात। जैसे आप वृंदावन से दिल्ली जा रहे हैं बस में बैठ करके, सुबह 5 बजे वाला बस में बैठे जा रहे हैं, रास्ता में फोन आया, भाई साहब कहाँ हो, कहाँ क्या कर रहे हो आप? अरे भाई मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अरे भाई थोड़ा बात करना, रहे 80 स्पीड में जा रहा हूँ मैंने, अभी बात नहीं सुन पाऊंगा तेरा। आप सच बता रहे हैं? आप तो खूब बैठे हैं बस से, आराम से चनाचुर खा रहे होंगे बैठे बैठे, आप बोलते हैं कि 80 स्पीड में जा रहा हूँ, झूठ बोल नहीं रहे? जाता रहा है गाड़ी, बस जा रहा है, आप तो बैठे हैं, आपके बोला मैं जा रहा हूँ करके, लेकिन आप बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे आप फोन आएगा भाई मैं जा रहा हूँ, अरे तू कहाँ जा, तू तो बैठा है, बैठ के मिक्सचर खा रहा है, तू कैसे बोल रहे तू जा रहा है करके, लेकिन हमको बोलना ही पड़ेगा। आप थोड़ी फोन बोलेंगे मैं बैठा हूँ चना चुरू खा रहा हूँ, नहीं आप जा रहे हैं लेकिन आप जा नहीं रहे, आप बैठे, यही है अंतर। क्योंकि हम बस में जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, बस जा रहा है, लेकिन हम बोलेंगे हम जा रहे हैं। ठीक है, बस और आप, ये आपके शरीर और आप, तो शरीर गाड़ी है और इस गाड़ी में आप सवारी, आप बैठे हैं, शरीर अपना प्रकृति अपना नियम के हिसाब से वो चल रहा है। शरीर को 2-3 बार पेट्रोल डालना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, आना आएगा, जो जो शरीर धर्म होता अपना कर रहा है, लेकिन हम इसमें बैठकर बोलते मैं कर रहा हूं, मैं खाऊं, मैं मरूं, मैं जो मुझे इसे बोला ये करा, अरे तुझे कुछ कहा ही नहीं उन्होंने, न तेरा कुछ हो रहा, तो बिल्कुल अलग ही वस्तु है, बिल्कुल अलग वस्तु, हर प्रकार से अलग है, लेकिन हम इतने साम्यता में बैठे हैं कि कभी अलग मान ही नहीं सकते, हमेशा बोलते हैं कि मैं ही जा रहा हूं, मैं ही कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मुझे इसे बोला मुझे, अरे ये है आसक्ति। और जब तक किस गाड़ी के धर्म में बैठे, अपने गाड़ी के अंदर बैठे, भले आप अपने मान ले कि गाड़ी बस चल रहा है मैं नहीं चल रहा हूं, लेकिन जब तक आप बस में बैठे हो आप चल नहीं रहे, आप आराम से बैठ के पेपर पढ़ रहे हो, कुछ खा रहे हो, सामने कुछ आ गया, बस चल रहा था स्पीड में, कोई आ गया, वो ड्राइवर ने सडन ब्रेक मारा, किसी का नाक तोड़ेगा? आप तो चल नहीं रहे थे, आप बैठे थे मस्त से बैठ के पेपर पढ़ रहे, धूम लगेगा, सामने फड़ेगा आपका नाक। अरे जब आप गाड़ी नहीं है, आप चल भी नहीं रहे थे, चल तो हो रहा था, वो सडन ब्रेक मारा, तो तुम्हारा ये हाल होगा ही, क्यों? क्योंकि हम गाड़ी में बैठे, जब तक शरीरस्थ हैं हम लोग, जब तक गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी का धर्म से हम धर्मित होना पड़ेगा ही, इसमें बचने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि आप उसमें बैठे हैं, आप भले बैठे हैं लेकिन वो 80 की रफ्तार में चल रहा है तो आप भी चल रहे हैं, वो जो जहां खड़ा होगा पलटे जो कर आप उसी में, उसी के प्रभाव आपका पुनर्पण पड़ेगा पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम शरीर में जब तक है शरीरी बन करके शरीरस्थ हैं, शरीर का जो कुछ धर्म है वो धर्म हमारे ऊपर अवश्य लागू होगा, उसमें हम बच नहीं सकते। शरीर को कोई एक थप्पड़ चलाया शरीर को, वो शरीर हमारा नहीं है, शरीर अलग है हम, लेकिन हमको लगेगा मुझे मारा लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये 3 बात को जो जान लेता है तो इस शरीर में रहते हुए भी अपि इस शारीरिक धर्म, सब शरीर अपना अपना कार्य धर्म करते हुए भी वो उससे प्रभावित नहीं होगा। ये बड़े गड़बड़ी है, कैसे नहीं हो सकता? आप भले अच्छी तरह से समझ लो, जान लो, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर तो मेरा एक कवर है, एक कवर के अंदर मैं अलग वो अलग, कितने भी जान लो, तो शरीर में जो शक धक्का लगेगा कि आपको नहीं लगेगा, आप नहीं गिरेंगे, किसे नहीं गिरेंगे, गिरेंगे। शरीर अगर गिर पड़ा तो आप भी गिर पड़ेंगे, आप ही शरीर गिर पड़ा आप खड़े रहेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। बस में जब तक बैठे हैं, बस एक्सीडेंट हुआ तो आपको क्षत विक्षत होंगे, ऐसे तो नहीं हो सकते। भले आप कितने प्रकार मान ले, बिल्कुल मैं अलग हूं, गाड़ी अलग है, लेकिन जब तक गाड़ी में बैठे हो तो गाड़ी के धर्म आप लागू होगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि केवल इन तीन को जान लेने से कि गाड़ी क्या है, ये सवारी क्या है, मतलब जो उसमें बैठे हैं यात्री वो क्या है, उन दोनों का क्या तफात है, क्या धर्म है, क्या कर्म है, और वो गाड़ी जो चला रहा है और उसको बैठा कर आपको कोई काम में भेज रहा है, वो जो संचालक है उसको भी जो जान ले, ये तीनों को जान करके इसी प्रकार अनुरूप कोई काम करे, वो गाड़ी में बैठे हुए भी इस गाड़ी के धर्म मतलब जड़ प्रकृति में रहते हुए भी, प्रकृतिस्थ होकर भी प्रकृति के धर्म उसको लागू नहीं होगा, उससे बच जाएगा। केवल जानने से हो जाएगा? कितने भी जान लो, जान करके डायरी में नोट करके लिखो, फोटो भी ले लो, नाक तो थोड़े गया आपका, बच नहीं सकते, फिर भगवान कैसे कहते हैं? तो केवल ज्ञान के द्वारा ये काम नहीं चलेगा, केवल समझ आ जाने से काम नहीं चलेगा, बच नहीं सकते। तो इसलिए भगवान ने अंतिम श्लोक का जो शब्द दिए हैं, केवल ज्ञान के योग के द्वारा समझने से काम नहीं चलेगा जब तक वो मुझ में मई स्थित। ये क्या श्लोक बोलते हैं? नाज्यते प्रकृति स्थो अपि, प्रकृति में रहकर भी वो प्रकृति का धर्म से बच जाएगा, तदगुणे प्रकृति के गुण से बच जाएगा। क्यों? ना स मई स्थित, वो प्रकृति में थोड़ी स्थित है, वो गाड़ी में है ही नहीं, वो तो मेरे में है, बैठा तो गाड़ी में है, लेकिन वो शरीर बैठा है गाड़ी में, वो और कहीं बैठा है। मतलब ये समझो उनका शरीर का नाक कान तोड़ेगा, ये तो अवश्य है क्योंकि शरीर बैठा है, लेकिन उनका नहीं तोड़ेगा, वो शरीर से अलग है क्योंकि वो तो मेरे में बैठा है। इस प्रकार स्थिति में कोई आ जाए तो उसको इस भूत प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकता, यद्यपि भूत प्रकृति में रहते हुए वो स्थिति केवल जानने से नहीं, भगवान पहले तो बता दिए उसको स एवं इस प्रकार कोई जान ले, जानने से नहीं, भगवान की जान करके जब भगवान की भक्ति नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, केवल जानने से काम नहीं चलेगा, है ना? आपको रसगुल्ला खाने में तो अच्छा लगता ना, गुलाब जामुन कौन सा अच्छा लगता है? गुलाब जामुन ना, गरम गरम लाल लाल गुलाब जामुन खाने से अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता नहीं गुलाब जामुन कैसे बनता है, तो खाने के लिए अच्छा लगता है तो आप मेरे खाएंगे यार बनाऊंगा कैसे करूं, तो आपने उसके ऊपर गवेषणा करेंगे जाकर के जो गुलाब जामुन जहां बनता है उससे सारे तथ्य लिए, सारे सब्जेक्ट लेकर के पूरा सारे रिसर्च करके निकाले, एक गुलाब जामुन का वेट इतना होता है, इतना गोलाई इतने होता है, कलर ऐसा होता है, उसमें ये इंग्रेडिएंट्स है, ऐसे ऐसे बनाने का विधि है, सारे आपने एक साल का कोर्स करके सारे जान लिए, लेकिन अब तक खाए नहीं, तो कैसे पता चलेगा भाई? वो नरम है कि गर्म है कैसे पता चलेगा? रिसर्च से पता चलेगा? नहीं जी, इसमें नहीं पता चलेगा, इस ज्ञान से कुछ नहीं। और जो कुछ नहीं किया है वो मिल रहा जाके प्रभु जी मुझे एक दो दे दो ना, मांग कर दो खाया, वो बता सकता है क्या? बस। तो इसीलिए ये सारे लंबा प्रोसेस, ज्ञान ध्यान योग कितने कर लो, बहुत समझ लो, साधन कर लो, कुछ नहीं पकने वाला है, बनने वाला, जब तक उसको हम आजमाए नहीं, भगवान के साथ भक्ति क्रिया मतलब भगवान को सेवा नहीं किए, उनको जाने उनमें नहीं हो गए, मैं स्थित, तब तक इस स्थिति से हम अलग नहीं हो सकते। हम लोग दुख भोग करते हैं, सारे संत महंत शास्त्र एक स्वर में कहते हैं कि हम बद्ध हैं, बद्ध दशा में हैं, इसलिए दुख भोग कर रहे हैं, तो मुक्त हो जाना चाहिए, आपसे हट जाओ यहां से फिर दुख नहीं होगा, आप जीवा तो हो, नित्य मुक्त हो, ये सबसे बिल्कुल परे है, आप भूख प्यास शोक मोह भय से बिल्कुल अलग है, आप फंसे हो इसमें अलग हो जाओ उसमें, फिर क्या? तो अलग होना सभी चाहते हैं दुख से बचने के लिए, और अनेक अनेक उपाय भी है, बताया गया है, उसको करते भी हैं। जो अनेक अनेक मार्ग है दुख निवृत्ति के लिए, बंधन से मुक्ति पाने के लिए, इस अनेक अनेक मार्गों में से ये जो शुद्ध भक्ति के मार्ग है वो ऐसा सरल, सहज, अमोघ और ऐसा सटीक मार्ग है कि जो आपको बहुत कम समय में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करा देगा। बाकी कोई ऐसा मार्ग नहीं जिसके ऊपर आप गारंटी दे सकते हैं कि हो जाएगा। करो, हो तो हो सकता, हो जाना चाहिए, गारंटी नहीं है। कितने टाइम, उसका कोई गारंटी नहीं है। होगा कि नहीं, गारंटी नहीं है, कुछ गारंटी नहीं है। और बड़े कष्ट साध्य भी है, कोई सरल नहीं, बड़े जटिल भी है। लेकिन एक भक्ति योग ऐसा है, इसलिए जब अर्जुन ने 11 अध्याय तक उपदेश सुना भगवान से, सुन करके बोला, भगवान आप सही से क्यों नहीं बताते, ये तो बताओ। अब कभी बोलते हैं अब जोगी नाम अपि सर्वेशाम, वो बड़े हैं, फिर बोलते हैं कि कर्म त्याग करो, ये करो, ढिंग करो, बकरे ठीक से बताओ तो सही। ये आप बोलते हैं कि आपको उपासना करना, कोई श्रद्धा भक्ति युक्त होकर का उपासना करे और कोई आपको मान करके आपके निर्गुण निराकार अव्यक्त रूप की उपासना करे, इन दोनों से जोगवित्तम कौन है? जोगवित्तम मतलब टॉपमोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। जोग, जोगवित्तर, जोगवित्तम, सुपरलेटिव डिग्री, कौन सबसे टॉपमोस्ट है मुझे बताओ। ये प्रश्न को सुन करके मानो भगवान तुरंत ही अति खुशी के साथ हंस करके उत्तर दिए, इमीडिएट आंसर। नहीं तो बिल्कुल सबके जाना माना हुआ बात है, उसको पूछता क्यों है, क्या जाना माना बता रहे, इमीडिएट आंसर दे दिए। क्या आंसर दिए? दूसरा श्लोक द्वादश अध्याय का भगवद गीता का, जो श्रद्धा के साथ मेरे इस अतीव सुंदर कमनीय श्याम सुंदर रूप को उपासना करता है शुद्ध भक्ति के साथ, वो तो निश्चित रूप से श्रेष्ठतम है, जोगवित्तम है। इमीडिएट आंसर भगवान देते। फिर बोले नहीं है, वो दूसरे ग्रुप वाले भी हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जो मुंह से इमीडिएट निकला वही निकला। तो अगर इस बंधन से बचने के लिए कोई उपाय है, अनेक उपाय तो है, लेकिन भगवान स्वयं अपने मुख से घोषणा करके कहते हैं, दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये जो मेरा गुणमयी माया है जिसके द्वारा ये संसार को मैं रच करके फंसा करके रखा हूं, ये मेरी माया है। जानता है किसका है? मेरी है, और किसी के बाप के नहीं है। ये मेरी शक्ति है तो उसको पार पाने में कौन है माइकलाल पार पा जाए? कोई नहीं, क्योंकि मेरा शक्ति है, मम माया, इसलिए दुरत्यया, मेरी माया है, उसको तो पार पाना किसी के बस की बात नहीं। हाँ, कोई अगर मेरे में आ जाए, माम एव ये प्रपद्यन्ते, यहां एव शब्द दे करके कहते हैं, निश्चित रूप से केवल मुझे ही कोई प्रपत्ति करे, मेरा शरण में आ जाए, मेरा सेवा, मेरा भक्ति करे, तब तो मेरी माया उसको छोड़ देगा, क्योंकि मेरी माया है। जो मेरे पास हो गया, मेरी संबंध हो गया, तो मेरी माया बोल गया हमारे सार के हैं संबंधी, उनको क्या करें, उनको छोड़ देंगे। यहां पर प्रभुपाद जी ने जो भगवद गीता के श्लोक उदाहरण दिए हैं 14 अध्याय से, क्या श्लोक है? मामेव व्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते, मांग च, च शब्द आया, च माने भी वही एव शब्द और च शब्द पर्यायवाची, एक ही बात। यहां माम एव, यहां मांग च, बात एक ही है। केवल मुझे, और किसी को नहीं, मुझे ही केवल। मांग च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, कोई अगर मुझे सेवा करेगा, मेरा भक्ति करेगा, कैसा अव्यभिचारिण भक्ति, एक एडजेक्टिव दे दी विशेषण लगाए, भक्ति तो मेरा ही करना पड़ेगा और किसी का नहीं, वो कैसा भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति जो, अव्यभिचारी भक्ति जो कैसा, वो गुणातीत हो जाएगा। अव्यभिचारी भक्ति जो कैसा, ना भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्ति में व्यभिचार है। व्यभिचार शब्द समाज में बहुत चलता है, आप सब जानते होंगे, आजकल तो बहुत बड़े बड़े व्यभिचारी होते हैं, तो इसलिए अब बड़े सुलभ शब्द है, आप ठीक से जानते होंगे ना, नहीं व्यभिचारी का मतलब समझते ना, नहीं तो इसलिए व्यभिचार ना करना, ऐसे संसार में व्यभिचार शब्द को ऐसे समझते हैं जैसे कोई स्त्री विवाहित है तो आपने जो पति है उनके पति ही अनुरक्त होना, उनके होकर ही रहना, केवल उनके अधीन होकर रहना, इसको बोलते हैं कि अव्यभिचारी। अगर उनके साथ तो है ही है, फिर और भी दो पांच पांच साथ कुछ और, तो बोलते हैं कि अव्यभिचारी, मतलब अव्यभिचारी नहीं है, व्यभिचार कर रहा, वो व्यभिचार कर रहा। तो भगवान इसी यही शब्द को यहां भी लगाए, बोलते जो मेरे साथ भी, मैं सबका पति हूं, भर्ता हूं, पालक हूं, पोषक हूं, असली पति तो मैं ही हूं, पतिर गति मैं ही, गति पति सबू मैं ही हूं, और मैं डिमांड करता हूं भाई मेरे पास आओ, मैं ही सब कुछ करूंगा, देखभाल करूंगा आपका, और आप बोलेंगे हाँ हाँ आपके पास जाऊंगे, लेकिन ये सब भी मेरे साथ हैं, उनको भी करूंगा, तो ये फिर व्यभिचार हो जाएगा मेरे साथ। ऐसा नहीं, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, अनन्य भक्ति जो केवल भगवान के साथ। एक बार ऐसी घटना हुआ था, श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब गोस्वामी नहीं बने थे, अभी संतोष और अमर थे, बड़े उच्च कुल संभव थे, बड़े ज्ञानी थे, पढ़े लिखे, बहुत समझदार, गुणवान रूपवान व्यक्ति थे, उनका नाम अमर था, अमर देव और संतोष देव था। तो किसी कारण से उनका बुद्धिमत्ता, उनके चतुरता को जान करके उसी जमाने में जो राजा था बंगाल में हुसैन शाह, उनको पकड़ करके जबरदस्ती उनके मिनिस्टर बनाया, पोस्टिंग किया, उनका टाइटल चेंज कर दिया। वो तो मुसलमान लोग इसमें उस्ताद होते हैं चेंज चेंज करने, दबीर खां साकर मलिक कर दिया जो भी, लेकिन बड़े पोस्ट में थे, एक थे फाइनेंस मिनिस्टर, एक थे प्राइम मिनिस्टर, इतने बड़े राजस्व मंत्री प्रधानमंत्री, दो पदवी था उनको, मतलब राजा तो ही है, मानो प्रैक्टिकली राजा वही थे, नाम कोई था केवल उस इंसान, टोटल इतने बड़े दायित्व उनको दिए। लेकिन उन्होंने जब पढ़ाई कर रहे थे नवदीप में आकर के, तभी उनको थोड़ा बहुत पता चला था श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो भक्त होने के नाते स्वाभाविक उनके मति उसमें जाता था। तो मंत्री थे, यद्यपि तभी जमाने में मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, पेपर वेपर कुछ नहीं निकल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने देश विदेश का खबर लेते थे, महाप्रभु संन्यास लेने के बाद पुरी में थे, तो वो खबर भी इतने दूर से 600 किलोमीटर दूर कहां से कैसे उनके पास पहुंचता, क्योंकि वो पूरे बंग प्रदेश का अंग बंग कलिके के राजा थे, मंत्री थे, बड़े विद्वान थे, राजमंत्री होने के नाते खबर लेते थे। तो खबर लेकर के आपने घर में जब जाते थे प्राइवेट क्वार्टर में, डिस्टर्ब कर डिसाइड करके बोलते थे उनके पास जाना चाहिए, ये क्या मंत्री पद करना है, तो दोनों भाई मिल करके कई पत्र लिखे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास। तभी जाना तो पोस्टल डिपार्टमेंट भी नहीं था, ईमेल फीमेल की बात ही छोड़ो, फोन फोन तो था ही नहीं, पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं था कि पत्र लिख करके लाल बक्सा में डाल दो, 10 दिन में महीना में पहुंच जाएगा, कम से कम 1-2 महीना में तो पहुंच ही जाना चाहिए, लेकिन ये डिपार्टमेंट भी नहीं था। तो पत्र भेजने के लिए प्रधानमंत्री को भी आपने भोज पत्र में लिख करके एक दूत को, एक व्यक्ति को भेजना पड़ता था कि जाकर उन व्यक्ति को दे करके आओ, और यहां से कोई रिप्लाई आएगा तो वो भी बाई हैंड लेकर आना पड़ता था। तो बारंबार, क्योंकि मंत्री थे उनके कोई बड़ी काम नहीं था उनके लिए, किसी को भेजते थे, कई पत्र भेजे, श्रीमन महाप्रभु के पास, जब महाप्रभु नीलाचल में निवास कर रहे थे, कोई रिप्लाई नहीं आता था। जो दूत पत्र लेकर जाता था, जाके देता था, उनको पत्र देकर भेजते तो बताते भी होंगे उनको ऐसा व्यवहार नहीं करना, साक्षात परमेश्वर है, उनको ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं मानना, दंडवत करके फिर पत्र देना, फिर दंडवत करना, फिर हाथ जुड़ के खड़ा, सारे पंटिंग करके भेजते होंगे उनके आदमी को। वो भी जाकर ऐसा एक्शन करता भी होगा, वो बोलेंगे अपेक्षा भी करना, शायद कोई प्रत्युत्तर, कोई रिप्लाई लेटर आए। लेकिन वो बेचारा कई बार जा करके अपने ड्यूटी पूरा करता था, कोई रिप्लाई नहीं आता था। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक रिप्लाई लिखे, अपने हाथ से, हस्त कमल से भोज पत्र में दो लाइन रिप्लाई लिखे, और कई लेटरों का जवाब एक श्लोक लिख दिए, दो लाइन, सैकड़ों लेटर का जवाब दो लाइन दे दिए। और दो लाइन को हम जैसे हुड़पक तो हम अनंत काल तक समझ नहीं सकते क्या लिखे उन्होंने, लेकिन ये उनके भाषा उन्हीं के लोग समझ सकते हैं, और उप सनातन समझ गए। वो दो लाइन जो उत्तर में पत्र में लिखे थे भगवान ने, उन्होंने बार बार अनुनय विनय करते थे, अब कब तक हम आपके शरण में जाना चाहते हैं, कुछ करो, कब जाएं, क्या करें, बारंबार ऐसे प्रार्थना करते थे भगवान। कई ऐसे प्रार्थना के उत्तर में दो लाइन प्रतित्तर लिखे। इस प्रतित्तर का अर्थ ऐसा था, उसका अनुवाद ऐसा है कि जैसे कोई परव्यसनी नारी, परव्यसनी नारी समझते ना, जिसको व्यभिचारी कहते हैं, कोई विवाहित स्त्री लेकिन उनके मन उनके पति में न होकर कोई पर पुरुष में आसक्त हो, उसको परव्यसनी नारी कहते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसे कोई स्त्री, वो अपने घर का काम, रसोई बास घर का काम इतने एक्सपर्टली करेगी, इतने बढ़िया करेगी कि ना तो उनके सास, ना उनके और क्या क्या होते हैं, सास और ननंद और जो भी होते हैं उनके ससुराल में, किसी के साथ नहीं है, वो पता कर ले कि वो और कुछ मन में सोचता है। अरे इतने बढ़िया, अप टू डेट, बिल्कुल टाइम फिक्स के साथ ऐसे करेगी, सबको प्रसन्न कर देगी, लेकिन हमेशा चिंतन चलते रहेगी उनका मन में, कैसे चांस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं उनके पास जाऊं, बिल्कुल खबर लेती रहेगी, बिल्कुल चौकन्ना रहती होंगी, अपॉर्चुनिटी ढूंढती होंगी। बस यही उत्तर था, इतने सारे लेटर का जवाब इतना ही था। हम लोग क्या समझते उससे, लेकिन रूप सनातन राजमंत्री, उन्होंने बिल्कुल समझ गए भगवान की क्या उपदेश, क्या उनके इच्छा है, कि जब परवेसी नारी बोले हाँ तुम तो मेरे में चाहते हो, लेकिन नौकरी करते हो हुसैन शाह के वहां, आपके जो पति बनकर जिसको शादी किया पति बन करके वहां राजमंत्री हो, राजा तो हुसैन शाह है आपका, लेकिन पूछते मुझे, उसको राजा मानते, उनके घर में नौकरी क्या, उनका काम करते हैं और मुझे मेरा पास आना चाहते हैं। बोले वो तो ठीक है, ऐसा ही है जैसा एक पति स्त्री अपने पति को सब करती है, सेवा सेवा ठीक ठाक करता है, लेकिन सोचती दूसरे के बारे में, कब जाऊं बताओ मुझे, तो ठीक है ऐसा, तो ठीक है। इस प्रकार की जो स्त्री, वो बड़े कुशलता से, बड़ी अच्छा से अपने घर के काम करेगी, किसी को बताना चले, कब तक करेगी ना, जब तक सुजोग ना मिल जाए, सुजोग मिले तो ऐसे भागेगी कि ये दिन है कि रात है, कि रास्ता है कि पहाड़, कुछ ना पता चले, बिल्कुल उनके ध्यान मान चैतन्य कुछ अलग हो जाए। ठीक इसी प्रकार आप तब तक वहीं रह करके अपना काम करते रहो, लेकिन मन में बारंबार ऐसा सोचते रहो कि हमको वहां जाना है, कब सुजोग मिलेगा, और सुजोग मिलते ही भागाना। ठीक इसी प्रकार भाव, इस शरीर में रहते हुए शरीर की तथा कथित धर्म को ठीक ठीक पालन करते हुए, शरीर को जो आवश्यकता ठीक ठीक देते हुए, किसी को भी पता ना चले कि क्या सोच रहा है, क्या कर रहा, अपने घर में हो, माँ बाप के पास हो, नौकरी में हो, किसी के साथ हो, किसी के साथ हो, किसी को तिल मात्र भी पता ना चले कि आपका योजना क्या है, बिल्कुल ही नहीं, केवल आप और आपके इष्ट देव भगवान के साथ ये नाता, बाकी किसी के साथ नहीं, क्योंकि जो भक्ति है वो बाहरी दिखावट नहीं होता, ये तो अंगरूनी मामला है, इंटरनल मैटर है, ये एक्सटर्नल मैटर नहीं है। इसी प्रकार सोचो, जब सुजोग मिले इमीडिएट भागो, क्योंकि मन तो टूटल ही रहता है, केवल बाहरी ढक्कन ये काम में लगा रहता है, दूसरे को देखना कि पता ना चले किसको, जैसे चांस मिले भागो, है ना। इस प्रकार स्थिति में जो रहता है, इहार जस्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलेषु अवस्थासु जीवन मुक्त सउच्यते। जो इसी प्रकार संसार में सांसारिक प्राणी के रूप में जीते हुए रहते हुए सब कुछ काम क्रिया करते हुए भी अपने मन से, अपने वाणी से, अपने शरीर से केवल उस परम प्रभु परमेश्वर के लिए ही चिंतन करता है, चेष्टा करता है, तो जीते हुए सब कुछ करते हुए भी मुक्त है माना जाएगा, जीवन मुक्त स उच्यते। भले उसका नाक कान तोड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बोला मेरा क्या तोड़ा, शरीर तोड़ा, जाने दो, मैं शरीर थोड़ी हूं, वो ब्रेकडाउन हुआ तो होने दो, मेरे से क्या पड़ेगा। इस प्रकार चित्त वृत्ति, इस प्रकार भाव आ जाए। जब रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दे रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी पहले बार जो मिले, बिल्कुल पकड़ लिए महाप्रभु के चरणों को, नहीं मैं और नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बिल्कुल मन छोड़िए। भगवान देखे तो कोई भरी सभा में मेरे ये बोलता है कि अब सब लोग बोलेंगे देखो वे ब्रेन वॉश करते हैं, लेके पटा करके, वे बच्चा है अभी तो, अभी बच्चा है, सावालक नहीं हुआ, अभी कैसे ले लिए उनको वो तो पुलिस केस कर डालेंगे। तो महाप्रभु उनको सबको दिखाते हुए उनको देखो खूब जोर से डांटे, मरकट वैराग्य ना आकर लोक दिखाया, ऐसे बंदर की तरह वैराग्य मत बनो, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है, जाओ घर में जाओ, जैसे घर में रहना है ऐसे कर रहा है, जैसे आवश्यकता है ऐसा विषय भोग करो, जाओ। लेकिन ये तो सभी समझ गए, देखा कितना बढ़िया बात कर रहे हो, रखे नहीं भेज दी, जाओ वापस। लेकिन दूसरे जो पद का बोले कि क्या दूसरे पद बाहिर है लोक की धर्म, क्या वो शब्द है, अंतर भक्ति आ रहा, हाँ लोक व्यवहार, अंतर निष्ठा करो बाहिरे लोक व्यवहार, अचिरेण कृष्ण तुमार करीबे न उद्धार। मतलब कृष्ण आपका चिर मतलब लेट, अचिर मतलब लेट नहीं हुआ, बहुत जल्दी आपका उद्धार कर लेंगे। क्या करने से उद्धार कर लेंगे जल्दी आपका, ना बाहर में लोक व्यवहार करो, लोग जैसे आपसे आशा करते हैं, जिस प्रकार के व्यवहार आशा करते हैं, ठीक है ऐसे व्यवहार करो लोगों के साथ, समाज के साथ, लेकिन अंदर में निष्ठा रखो। ये किसी को बताना चले, अगर ऐसा प्रैक्टिस तो करोगे तब लेट नहीं होगा, बड़े जल्दी से आपको कृष्ण उठा लेंगे, उद्धार कर लेंगे। भगवद गीता में कृष्ण ही बात कहते हैं, मई सर्वाणी कर्माणी सन्यस्य आध्यात्म चेतसा, सारे कर्म को मई मुझ में लगाओ, मुझे मुझे दे दो सारे कर्म को। इस प्रकार का अगर सारे कर्म करोगे तो मैं इस संसार सागर से तुझे उद्धार करने के लिए स्वयं आ जाऊंगा, उठा के ले जाऊंगा, वहां भी अच्छी रात सदो, लेट नहीं करूंगा, जल्दी ले जाऊंगा। तेसा महंग समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर से जल्दी से उठा लूंगा आप, इस प्रकार बोले। लेकिन हम करते करते कैसे हैं, बाहर को दिखाते हैं कि बिल्कुल बड़े मजबूत भक्त हैं, पहनने में तिलक कंठी चोटी और कपड़ा हैन तेन खान पान बोली चाली, ये तो ऐसे बाहर में बिल्कुल महाभगत, बाहिरे भक्ति अंतर में पूर्ण लोक व्यवहार। हमको पता है अंदर में क्या है, क्या कला अंगार अंदर में है, वो तो भगवान को जाने, हमको भी पता है, ये दोनों के अलावा दूसरे किसी को पता नहीं। अगर हम इसी उल्टी चाल चलें तो भगवान के फॉर्मूला के अनुसार उनको कहे कि अगर अंतर में निष्ठा बाहरी लोक व्यवहार करो तो अचिरेण में उद्धार करूंगा आपका, अगर तो इसे उल्टी चाल चलो अचिरेण चीरेण भी दूरा उद्धार, कितने लंबे समय से करो उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्मूला उल्टी चल रहा है। बाहर में सब कुछ करता है, अंदर में तो मुझे भी पता है तुझे भी पता है, तो इस प्रकार नहीं, भगवान इस श्लोक में जो बोलते हैं कि शरीर में रहते हुए शरीर धर्म के काम में बिल्कुल लिप्त हुए भी बिल्कुल निर्लिप्त हो जाएगा, किसी प्रकार, क्योंकि मुझ में स्थित हो जाएगा। भगवान में स्थित होने का कार्यक्रम है शुद्ध भक्ति, अनन्य भक्ति, जिसी को प्रभुपाद जी ने कहते हैं जो मांग च यो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारी भक्ति ही भगवान में स्थित होने का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार भक्ति अगर करें, हम लोग भी तथाकथित भक्ति करने के लिए चल रहे हैं, लेकिन हमारा भक्ति एक्सटर्नली भक्ति है, इंटरनली नहीं। तो भगवान कैसा चाहते हैं, एक्सटर्नली लोक व्यवहार, इंटरनली भक्ति, तब जाकर वो काम बनेगा, तब निर्लिप्तता हो पाएगा, है ना। तो कब ऐसा हो पाएगा, अभी तक नहीं हुआ, कब अब होगा, ऐसा मन में कम से कम सोच करना चाहिए, विचार करना चाहिए, आशा रखना चाहिए, प्रयास भी करना चाहिए, यही है असली प्रयास। और भगवान अंदर में बैठे हैं, वो हमारा प्रयास को समझते हैं, जानते हैं, वो फिर फैसिलिटेट करेंगे, ऐसा व्यवस्था करेंगे। तो हरे कृष्ण, किसी का कोई शंका है, कोई कमेंट है? ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। Okay.